in Hindi or English.
Sorry?
He'll speak in Hindi or English. Hindi. It's our great fortune to have His Grace Gaurang Prabhu this evening. Many of you know about Gauranga Prabhu. Still, I would like to introduce him for my purification. His Grace Gaurang Prabhu was a student of BTEC IIT way back in 92, 93 when he passed out at the time. So I had the good fortune of being a close friend of his during those days when we attended the program of His Grace Devamrit Prabhu. So Devan Prabhu used to give a class every Saturday morning, and myself, Gaurang Prabhu, Paramahams Prabhu and many others, we used to go for the program. So even in his college days, he was a very brilliant student. And after he passed out, when we were in, I was working in Pune, so Devan Prabhu had sent Gaurang Prabhu to protect me and take care of me. So he had sent him for some time. He was working with Kirloskar Oil Engines Company, and of course company job was just a namesake thing for him. He was absorbed in reading Srimad Bhagavatam and preaching in the evening. Practically every evening he used to go for preaching programs. And 94, beginning of 1994, he joined the Chopari Temple, and within a week I also followed him and I also joined. Both of us joined together. So Gaurang Prabhu is very famous for reciting Srimad Bhagavatam. Right from the early days of his Chaupati stay, he used to read sections of Bhagavatam and systematically present it to in different areas of Bombay. So in this way he practically covered the whole Srimad Bhagavatam in many places. Now he has taken up Chaitanya Charitamrita in the same way. He is practicing, practically he can quote hundreds of verses in Chaitanya Charitamrita now. He is reading it now. So his lectures are a great delight to brahmacharis, to college students and congregation, rich class of people, poor class of people, elite people, managers, all kinds of people. Anybody from any walk of life will appreciate his association. And besides studying Bhagavatam and preaching, he also has been teaching in management circles. So he came up with a seminar presentation called as Corporate Athlete, which he presents in the company, in many corporate companies. And he gives many seminars on topics like overcoming anger. So in Bombay, IYF is the source of inspiration for all devotees there. And in Bombay IYF, they started this Prerana Festival. It was Gaurang Prabhu's idea. And over the years, the Prerana festivals have picked up, and now Prerana books are very famous now, based on the Prerana lectures. And he also goes to IIT Powai, from where he originally was a student. There he has dozens and dozens of students there, who are wonderful devotees there. In the recent past, he has been traveling abroad to London and United States of America, practically every 2 or 3 days traveling to a new place, going to a new temple, meeting new congregation, preaching, extensive travel, and propagating Krishna consciousness worldwide. Now, recently returned back, and I placed a request to him to come to Pune, and he kindly agreed. So I would like to thank him and express our warm welcome to him to Sri Radha Kunjabihari Temple. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Gaurang Prabhu ki!
Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vishe Namaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Sri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda हरे कृष्णा। तो राधे श्याम प्रभु ने बहुत अधिक स्तुति कर दी आरंभ में। इतना ज्यादा मीठा खाने पर डायबिटीज हो जाता है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज यहाँ श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में मुझे हरि कथा करने का अवसर प्रदान किया। जैसा मैंने पहले भी वर्णन किया है, पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के प्रमुख मंदिरों में इस मंदिर की गणना होगी, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों में जब से राधेश्याम प्रभु यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे प्रचार कार्य और मंदिर की गतिविधियाँ इतने सुचारू ढंग से हो रही हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पीछे भी बैठने की जगह और बना दी गई है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। और इस तरह ये बहुत अच्छा एक लक्षण है, हैविंग नो स्पेस, जगह नहीं मिलना, अर्थात ये बहुत अच्छा लक्षण है, क्योंकि विश्व के कई मंदिरों में बड़े बड़े हॉल हैं, लेकिन लेक्चर बैठने जाओ तो एक व्यक्ति एक कोने में रहता है, एक व्यक्ति दूसरे कोने में रहता है, एक व्यक्ति यहाँ कहीं रहता है, दूरबीन लेके देखना पड़ता है कौन कहाँ बैठा है। इंद्रद्युम्न महाराज एक बार ऐसे लेक्चर के लिए बैठे थे एक ऐसे मंदिर में, बड़ा हॉल था, इतना ही बड़ा हॉल था, लेकिन चार लोग थे, चार चतुष्कुमार की तरह चार कोने में बैठे थे। तो लेक्चर आरंभ करने के लिए पहले बोले, आप लोग पास आ सकते हो, मैं काटूंगा नहीं आपको, इतनी दूर बैठने की आवश्यकता नहीं। तो एक दृष्टि से बहुत अच्छा है कि इतनी भारी संख्या में लोग हैं और बैठने के लिए जगह नहीं, और सब खचाखच भर के पास में बैठे हैं, तो ये उचित आध्यात्मिक स्वास्थ्य का लक्षण है कि यहाँ पर प्रचार कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है और भारी संख्या में लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, और राधेश्याम प्रभु और उनके प्रचारकों के और जितने गृहस्थ काउंसलर हैं और बाकी जितने लोग इस प्रचार कार्य में सहयोग दे रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये आशा करता हूँ कि इस तरह ये प्रचार कार्य बढ़ता चला जाए, और आप लोगों का जो नया मंदिर बांधने की योजना है वो शीघ्र अतिशीघ्र सफल हो, जिससे भारी संख्या में लोग एक साथ एक जगह बैठकर कथा का लाभ ले सकें। श्रील प्रभुपाद का यही स्वप्न था कि मंदिर में कथा और कीर्तन हो, और लोग इस्कॉन के मंदिरों को विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकार करें और यहाँ बैठकर कथा और कीर्तन में आनंद लें। प्रभुपाद को लोग उस समय चुनौती देते थे कि आप लोग इतने विशाल मंदिर क्यों बांधते हो, तो प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के भी कथा कर सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए मंदिरों की बहुत आवश्यकता है, जहाँ लोग आ सकें, एकत्रित हो सकें और कथा लाभ कर सकें। तो आज आप सभी का संडे फीस्ट प्रोग्राम हो चुका, उसके बाद भी इतने सारे लोग फीस्ट के पास बैठे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि फीस्ट के लिए नहीं बैठे हैं, कथा के लिए ही बैठे हैं। क्योंकि कभी कभी हो सकता है संडे फीस्ट में शंका हो जाए कि क्यों बैठे हैं, तो ये आप सभी का बहुत बढ़िया प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है कि कथा के लिए, श्रवण के लिए इतनी रुचि है। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह आपकी रुचि बनी रहे, क्योंकि भक्ति में आना तो कठिन है, लेकिन भक्ति में टिकना उससे अधिक कठिन है, और भक्ति में उत्साह पूर्वक टिकना सबसे ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए दिन दूनी रोज चौगुनी हमारे उत्साह में वर्धन होता रहे, इस तरह का आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। नहीं तो कई बार भक्ति के आरंभ में लोग उत्साह में रहते हैं, चेहरा भी जोशीला दिखता है, लेकिन कुछ साल के बाद चेहरा बिल्कुल उतर जाता है, और लोग देख के पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, तुम भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ना, कर रहा हूँ, इसलिए ये हाल है। तो उनको देख कर दूर दूर से कोई भक्त बनने भी आएगा तो 10 बार सोचेगा, है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति क्या प्रचार करेगा? उसको देख कर ही हतोत्साहित हो जाएंगे। तो जब ठीक प्रकार से कोई भक्ति करता है तो उसका लक्षण स्पष्ट दिखता है। ऐसा बोर्ड लगा के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ, भले मैं उदास लगता हूँ लेकिन मंत्र का दोष नहीं है इसमें, वो मेरा ही दोष है। ऐसे बोर्ड लगा के घूमने की आवश्यकता नहीं। जो वास्तविक रूप से मंत्र जप करता है, कीर्तन करता है, कथा में आनंद लेता है और बिना अपराध के भक्ति करता है, उसके लक्षण बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। और प्रचार का अर्थ है कि वास्तव में हम अपने निजी अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें। प्रचार का अर्थ ये नहीं कि हम अपने दुखों को बांटें। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते करते परेशान हो जाते हैं और विचार करते हैं कि जो दुर्गति मेरी हुई दूसरों को भी वही करवाऊंगा, और पीछे लग जाते हैं लोगों के, और लोगों को अंदर खींचते हैं और मनी मन सोचते हैं अब पता पड़ेगा तुझे क्या होगा, जो मेरे साथ हुआ तेरे साथ भी होगा, देखते ही रहो। और ऐसा विचार करके जब प्रचार करेंगे तो वास्तव में बहुत अधिक समय तक उत्साहपूर्वक प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भक्ति के तत्व को समझकर हम अपने जीवन को सुष्ठु ढंग से महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलाएं। और आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर इतना बढ़िया सत्संग आपको प्राप्त हुआ है और राधेश्याम प्रभु और बाकी सब भक्तगण इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें अपने भक्ति में बहुत सटीक ढंग से ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन आता है, अध्याय 7, 8, 9, 10 और 11। तो 7, 8 और 9वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन है। 10वें अध्याय में वर्णन है किस प्रकार महाप्रभु पुनः जगन्नाथपुरी लौट के आते हैं, और 11वें अध्याय में वर्णन है कि कैसे महाप्रभु बंगाल से आए हुए भक्तों का स्वागत करते हैं और महाराज प्रताप रुद्र किस तरह बंगाल से आए हुए भक्तों को महाप्रभु के साथ मिलन करते हुए दर्शन करते हैं और उनके नेत्र चकाचौंध हो जाते हैं उनके भक्ति भाव को देखकर। तो आज हम 7, 8 और 9वें अध्याय में से महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा से कुछ शिक्षाएं चर्चा करेंगे। 7 या 8 शिक्षाएं हैं जो हम महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा से सीख सकते हैं। और कल प्रातःकालीन हम महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में आगमन, और कल शाम को वो ओपन ओपन प्रोग्राम नहीं है, वो क्लोज्ड प्रोग्राम। अच्छा, तो कल ओपन, ओपन मीन्स बिग ओपन, देर ऑल अलाउड। ओके, तो कल शाम को जो प्रोग्राम होगा उसमें हम 11वें अध्याय बेड़ा कीर्तन पास टाइम महाप्रभु के मध्य लीला से उसका चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो कविराज गोस्वामी नाना प्रकार के कारण इसके देते हैं। तो सर्वप्रथम मध्य लीला में 7वें अध्याय में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लोगों का उद्धार करने अपनी यात्रा पर गए, टू लिबरेट द पीपल ऑफ साउथ इंडिया। विश्वरूप सिद्धि प्राप्ते जाने न सकल दक्षिण देश उद्धारिते करेन एछल। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सभी अनुयायियों को बुलाकर कहने लगे कि विश्वरूप को खोजने के लिए मैं जा रहा हूं दक्षिण भारत। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे कि तब तक विश्वरूप पंडरपुर धाम में वापस भगवत धाम लौट के जा चुके हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यदि ये विज्ञापन करते कि मैं दक्षिण भारत में कीर्तन करने जा रहा हूं, कथा करने जा रहा हूं, तो हजारों उनके अनुयायी उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले ही जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि बालपन में मेरे ज्येष्ठ भ्राता से मेरा वियोग हो गया, पुनः मैं उनको ढूंढकर उनके साथ मिलन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। तो कई बार हम जब कहते हैं कि हम यात्रा पे जा रहे हैं तो बहुत लोग तैयार हो जाते हैं आने के लिए, लेकिन यदि आप ये कहो कि मैं जरा घर जा रहा हूँ, मेरे घर में मेरे भाई का कुछ दिमाग का कुछ प्रॉब्लम हो गया है और घर में कुछ दूसरी समस्या भी आ गई है, पैसे की कमी हो गई है और बाकी दो चार और झगड़े चल रहे हैं, उसको सब सुलझा के आऊँगा, कोई चलता है क्या मेरे साथ? तो सब बोलेंगे हम प्रे करेंगे आपके लिए, जाके आओ। तो घरेलू मामलों को सुनकर लोग दूर से प्रणाम कर देते हैं कि भाई चलो आप ही जाके आओ। तो इसलिए महाप्रभु ने विचार किया कि घरेलू समस्याओं का वर्णन करके मैं जाऊंगा तो अकेले जाने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए कहा कि क्या है घरेलू मामला है, विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूँ अपने भाई को, इसलिए कृपा करके आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इसमें कविराज गोस्वामी एक दूसरा पॉइंट ये बताते हैं, दक्षिण देश उद्धारिते कोरेन एछल, दक्षिण देश का उद्धार करने वो गए, लेकिन एक दृष्टि से वो जानते थे कि विश्वरूप की सिद्धि हो गई, फिर भी वो कह रहे थे कि मैं विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूं। तो इसको ये कह रहे हैं छल, अर्थात जानते हुए भी असत्य का सहारा लेना, ये उचित नहीं है, अनुचित है, छल है। लेकिन ऐसा छल का आश्रय क्यों लिया? दक्षिण देश उद्धारिते कोरेन ए छल, दक्षिण देश का उद्धार करने हेतु वो ऐसा किए। तो यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें अपने दैनिक व्यावहारिक कार्यों में निष्कलंक होना चाहिए, पारदर्शी चरित्र का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इस प्रचार के मिशन में हैं और क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेन धूमेनाग्निर इवावृता, कि कर्म का जन्म अकेला कभी नहीं होता, कर्म जब जन्म लेता है तो अपने जुड़वे भाई के साथ जन्म लेता है। कर्म के जुड़वे भाई का नाम है दोष, अर्थात जब कर्म का जन्म होता है तो साथ में दोष भी पैदा होता है। तो इसलिए किसी भी कर्म में दोष होता ही है, जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं होता ही है। तो इसलिए दोष से मुक्त नहीं हो सकते। तो प्रचार के कार्य में कई बार भौतिक जगत के लोगों के साथ व्यवहार करते समय कभी कभी छल का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे वर्णन आता है कि वसुदेव जब देवकी के रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे तो कंस को नाना प्रकार से स्तुति कर रहे थे, प्रसन्न वदनाम बोझौ नृशंसम निरपत्रप, वर्णन आता है कि वसुदेव का मुख प्रसन्न चित था, हंस रहे थे, विशाल मुस्कान उनके मुखमंडल पर छाई हुई थी और वो कंस को देखकर कंस की स्तुति कर रहे थे। अयम भोज यशस्कर, अरे भोज के वंश के यश को बढ़ाने वाले। तो एक दृष्टि से वसुदेव कंस की स्तुति कर रहे थे, लेकिन वो स्तुति वास्तविक नहीं थी। क्यों कर रहे थे? क्योंकि देवकी की जान बचानी थी। तो देवकी की रक्षा करनी है तो उस समय तथाकथित छल का आश्रय उनको लेना पड़ा। लेकिन वही वसुदेव जब बाद में नंद महाराज से मिले, जब नंद महाराज गोकुल से मथुरा आए थे और वसुदेव से भेंट किए, तो वसुदेव ने नंद महाराज से प्रश्न किया कि आपके बच्चे कैसे हैं बताइए। ये नहीं पूछा कि आपका पुत्र कैसा है, क्योंकि वो जानते थे कि वास्तव में नंद महाराज को पुत्री हुई थी और मैंने जाकर कृष्ण को वहां रख कर पुत्री उठा लाई। तो एक दृष्टि से यदि वसुदेव ये पूछते कि आपका पुत्र कैसा है तो वो एक छल होता, क्योंकि वो वसुदेव जी जानते थे कि नंद महाराज को संतान पुत्र का नहीं हुआ था, पुत्री का हुआ था। इसीलिए नंद महाराज जो कि भक्त हैं, भक्त के साथ आदान प्रदान करते समय वसुदेव शब्दों को माप तोल कर बहुत विचार करके चुन चुन कर कह रहे थे। वही वसुदेव जो कंस की स्तुति करने में नाना प्रकार से उनका यशोगान कर रहे थे, जो अच्छे शब्द मिले सब उन्होंने ठोक दिया वहां पर, क्योंकि जानते थे कि ये तो राक्षस है ही, चाहे मैं दो चार उसकी और स्तुति कर दूं तो इसकी गति सुधरने नहीं वाली, लेकिन यहाँ देवकी की रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ देखते हैं जब आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो कृष्ण भावनामृत मिशन की रक्षा हेतु और उसको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कभी कभी छल का आश्रय लेना पड़े, लेकिन मिशन को छोड़कर जब व्यक्तिगत रूप से भक्तों के साथ हम आदान प्रदान करें तो फिर हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसके लिए मिशन के लिए कभी कभी हमें ऐसा करना ही पड़ता है। श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं कि अभी हाल ही में मैं अमेरिका में डेट्रॉइट मंदिर में गया और वहाँ के टेंपल प्रेसिडेंट बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने उनको बताया था उस समय कि कृष्ण से वो कभी कुछ मांगे नहीं, लेकिन कृष्ण से वो केवल दो चीज़ें मांगे, एक डेट्रॉइट का फिशर मैंशन और दूसरा टोरंटो का एक विशाल चर्च। ये दोनों प्रभुपाद ने निजी रूप से कृष्ण से मांग कर लिया कि कृपा करके मुझे ये दो मंदिर दीजिए जिससे कि मैं यहाँ प्रचार के कार्य को आगे बढ़ा सकूँ। तो वहाँ पर वो फिशर मैंशन इतना विशाल है कि उसको देखकर आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। डेट्रॉइट नदी है, वो नदी का पानी सीधा मंदिर के अंदर घुस जाता है। विचार कीजिए कि चंद्रभागा नदी का पानी अगर सीधा यहाँ घुस जाए और यहाँ पर ही नौका हो और संडे फीस्ट के बाद सब नाव पे बैठ के नौका विहार के लिए निकलें तो क्राउड चार गुना हो जाएगा। संडे फीस्ट के साथ एक नौका विहार का अट्रैक्शन आ जाएगा। तो सीधा नदी का पानी अंदर आता है और सीधा अंदर घुस जाता है, बिल्कुल टेम्पल का हॉल है उसके बगल में सीधा अंदर, और वहाँ बोट वोट लगाने के लिए बहुत सारा जगह है और जितना वहाँ पर मार्बल है दुनिया के कोने कोने से आया हुआ, और इतनी सुंदर नक्काशी है, प्रत्येक कमरा विश्व के दूसरे दूसरे आर्किटेक्चर के अनुसार बनाया गया है। वहाँ के गोविंदा रेस्टोरेंट के अंदर जो पिलर है, खंबा है, वो जर्मनी में एक कैसल भूकंप के कारण टूट गया था उसका बचा हुआ हिस्सा लाकर लगा दिया वहाँ पे। और स्विट्जरलैंड के वहाँ पे कई कई ऐसे चबूतरे हैं उससे तोड़कर ला के वहाँ फिट किया गया है। और वहाँ पर एक 300 साल पुराना एक पियानो है, 300 साल पुराना। तो यहाँ पर हम लोग नए के पीछे पागल है, वहाँ पुराने के पीछे पागल है। और 300 साल पुराना ये पियानो है और उसको बेचने जाओ मार्केट में तो हजारों डॉलर का वो आएगा, क्योंकि वो एंटीक पीस है। और फिर वो मंदिर के एक लाइब्रेरी में से एक टनल नीचे से जाता है और वो टनल दूर कहीं निकलता है जाकर। तो जब मंदिर जब आरंभ किया था तब सब ब्रह्मचारी सेवा से बचने के लिए वहाँ से भाग के कहीं छुप जाते थे, इसलिए वो टनल को बाद में बंद कर दिया, क्योंकि टेम्पल कमांडर पागल हो जाता था ढूंढते ढूंढते। तो उस तरह इतना सुंदर मंदिर है कि देख के कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह प्रभुपाद ने इसको प्राप्त किया। लेकिन उस समय, और वो सबसे चोर डकैतों के एरिया के बीचों बीच है वो, तो आज की तारीख में भी कोई मंगल आरती के लिए जाता है तो कई बार मंगल आरती से निकलते समय कोई चोर डाकू उसको बाहर बंदूक दिखा के पकड़ लेते हैं। और अधिकांश लोगों के हाथ में केवल महाप्रसाद होता है, चोरों को वही दे के निकल जाते हो, क्योंकि मंगल आरती के समय तो कोई कुछ लेके नहीं आता है। तो इस तरह उस समय कोई संभावना नहीं थी कि ये कोई मंदिर को खरीदेगा, लेकिन प्रभुपाद ने मंदिर को बाहर से देखा, फिशर मैंशन, और देख के कहा ये इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। और भक्त लोग अपना जेब देख के बोल रहे हैं, भाई अपना खीसा तो खाली है, एक कोड़ी नहीं है देने के लिए, कहाँ से खरीदेंगे? प्रभुपाद ने कहा कृष्ण देख लेंगे, और अंदर घुस गए, और वो पूरा एस्टेट एजेंट भी साथ में घूम रहा है, और प्रभुपाद कह रहे ये ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा रहेगा ये जगह, और ये यहाँ पर ऑल्टर बिठा देंगे हम लोग, ये यहाँ अच्छा रहेगा, एक किचन यहाँ बढ़िया रहेगा। और सब लोग भक्त एक दूसरे को देख रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस प्रभुपाद के अंदर, जैसे कि खरीद लिया है, और खरीदने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं किस तरह डिजाइन बनाना है। और प्रभुपाद ने पूरा देखा और अंत में आके कह दिया उस एजेंट को, आपका ये बंगला हमको बहुत अच्छा लगा, ये राजाओं के लिए है, ये राजाओं का महल है। तो एजेंट भी बहुत खुश हुआ, जोर जोर से मुस्कुराने लगा। प्रभुपाद ने कहा लेकिन हम लोग भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम कृपा करके ये पूरा महल हमको दान में दे दो। वो ऐसा कहा तो बेचारा उस समय वो हार्ट अटैक आके गिरने वाला था, क्योंकि उसने जीवन में बहुत सारा नेगोशिएशन किया, लेकिन कोई इस तरह का नेगोशिएशन नहीं किया कि कोई रेट नहीं कुछ नहीं, सीधा दान में दे दो। और वो प्रभुपाद को अवाक होकर देख रहे हैं, और प्रभुपाद से कोई आशा नहीं मिली तो दूसरे भक्तों को देख रहे हैं, और भक्त लोग इधर उधर देख रहे हैं कि प्रभुपाद को नहीं देख सकते, उसको नहीं देख सकते, करेंगे क्या? दोनों अपने अपने स्थान पर अड़े हुए हैं। वो $25 मिलियन का प्रॉपर्टी प्रभुपाद ने $3 मिलियन में खरीदा, $1.5 मिलियन अपना अम्बरीश प्रभु दिए, और $1.5 मिलियन लेखा श्रवंती देवी दासी एक माताजी हैं, अम्बरीश प्रभु डेट्रॉयट के फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक, और ये लेखा श्रवंती माताजी उनके पिताजी वॉल्टर रूथर जो कि यूनियन लीडर थे उनकी बेटी, तो यूनियन लीडर और उद्योगपति दोनों आपस में वैरी, सांप और नेवले की तरह, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन देके फिशर मैंशन खरीदा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जो सुंदर महल प्रभुपाद ने खरीदा इस्कॉन के लिए, ये वास्तव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए एक बहुत महान योगदान रहा है। तो उस समय 3-4 दिन के बाद वो एस्टेट एजेंट एक पूरा ट्रक लेके आया, और ट्रक लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, और मैंने और नहीं बताया, जो इस फिशर मैंशन के अंदर बाथरूम है, बाथरूम के अंदर जितने फिटिंग है सब गोल्ड प्लेटेड हैं, गोल्ड प्लेटिंग, असली गोल्ड, गोल्ड पेंट नहीं, प्लेट, वास्तविक गोल्ड प्लेटिंग। अपना गमछा डालो तो वो गोल्ड का बना हुआ, और जो खोलो वो गोल्ड का बना हुआ, और नीचे जो बाथरूम में टाइल्स है वो टाइल्स के बीच में जो लाइन लकीर होती है वो गोल्ड प्लेटिंग। इतना गोल्ड सब जगह कि बाथरूम में जाओ तो प्रणाम करके आने का इच्छा होता है, स्नान कौन करेगा, इतना ऐश्वर्यशाली। तो ये व्यक्ति अंदर घुसकर पूरे फिटिंग विटिंग निकालने लगा, तो भक्त लोग बोले क्या भाई बेचने के बाद अब क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे वो बूढ़े स्वामी ने मेरे को फंसा दिया, पता नहीं क्या क्या उस दिन चिकनी चुपड़ी बातें कर दी, मैं मान गया, इतना कम रेट में मैं कभी मानने ही वाला नहीं था, पता नहीं कैसे मान गया, इसलिए अब मैं समझ रहा हूँ कि उसने उन्होंने मुझे फंसा दिया, इसलिए मैं थोड़ा अपना लॉस रिकवर करने के लिए ये सब माल लेके जा रहा हूँ। और वास्तव में ट्रक भर के काफ़ी कुछ उसमें से ओरिजिनल जो सोफा था, शैंडलियर था, वो सब निकाल के लेके गया वो। तो इस तरह प्रभुपाद प्रीचिंग मिशन को बढ़ाते समय पाश्चात्य देश में कई बार ऐसे तत्वों के साथ झेलते थे। तो कई बार ये देखा गया कि दक्षिण देश उद्धारित कोरेन एज हल है कि नहीं, तो कैसे हरे कृष्णा आंदोलन में लोग आके ज्वाइन हो जाते हैं, तो भी जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय लोग ज्वाइन हो जाते थे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब माता पिता आ जाते तो वो ब्रह्मचारी लोगों को अंदर अपने खटिया के नीचे छुपा देते थे। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो लोग कहेंगे ये क्या चल रहा है। जैसे रसराज प्रभु बताते हैं, उन्होंने एक लड़के को प्रीच करके लाया, वो ज्वाइन हो गया तो उसके पिताजी आ गए और झगड़ा करने लगे, छोड़ दो मेरे बच्चे को, तो बहुत जवान है, जब मेरी उम्र का होगा तब उसको मंदिर में आना चाहिए। तो बोले ठीक है, बच्चे को छोड़ देते हैं, आप आ जाओ मंदिर में। तो बोले जरा मैं घर में पूछ के आऊंगा। अगले दिन आए, बोले बच्चे को ही रहने दो ठीक है। बोले हरे कृष्ण, बोले खतरनाक है, मुंह लगने जाओ तो अपने पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार प्रचार करते समय, जैसे प्रभुपाद ने एक भक्त को मंदिर में ज्वाइन होने दिया, चित्त हरिदास, तो उनकी माँ आके कहने लगी कि मेरा लड़का आपके मंदिर में आ गया। प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा लड़का है, बहुत होनहार है, बहुत अच्छी सेवा करता है। तो उसकी माँ ने कहा मेरे 8 और बच्चे हैं। प्रभुपाद ने कहा सबको भेज दो। वो घबरा गई, तो बोले नहीं, एक ही ठीक है, और वो चली गई वहां से। दक्षिण देश उद्धारित करे नहीं छल, तो इसलिए दक्षिण देश का उद्धार करना था, इसलिए महाप्रभु थोड़ा बहुत इस तरह बोल के वो निकल लिए। तो ये पहला कारण था। अच्छा, दूसरा कारण था, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के विधि विधान को प्रदर्शित करना चाहते थे, टू डेमोन्स्ट्रेट द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ अ सन्यासी, कि सन्यासी को किस तरह अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, सन्यासी को किस तरह आचरण करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड प्रतिपादित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब ये विज्ञापन किए, घोषणा किए कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूं, तो तभी नित्यानंद प्रभु कहने लगे, महाप्रभु आप तो कभी दक्षिण भारत में पहले गए नहीं हो, आपका इस यात्रा में कोई पूर्व अनुभव नहीं है, मैं 20 साल पूरे भारत में तीर्थ यात्रा में घूमा हूं, मेरा बहुत अनुभव है, तो ऐसा कीजिए मुझे अपने साथ लेके चलिए, तो मैं आपका टूर गाइड बन जाऊंगा और आपको यात्रा करने में सुविधा होगी। महाप्रभु ने कहा आपके साथ मेरा पूरा पहला अनुभव रहा था, वृंदावन जाना चाहता था, मुझे नवद्वीप भेज दिया तुमने, और जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने गया तो मेरे डंडे के 3 टुकड़े करके फेंक दिए, तो आपके साथ यात्रा करना खतरे से खाली नहीं, और बाकी जगदानंद पंडित तो मुझे नाना प्रकार से बहुत सारे भोग की सामग्री देते रहते हैं, और मैं स्वीकार नहीं करूं तो क्रोधित हो जाते हैं, और दामोदर पंडित जी तो मेरे साथ व्यवहार करते समय ऐसा विचार करते हैं कि मुझे कोई वैष्णव शिष्टाचार का ज्ञान है ही नहीं, और मुझे बुरा भला इंगित करते रहते हैं, और मुकुंद जब मुझे देखते हैं कि मैं नाना प्रकार से तपस्या करता हूँ, उन तपस्याओं को देखकर मुकुंद के मन में बहुत शोक होता है, और उसके शोक को देखकर मैं शोकाकुल हो जाता हूँ, इसलिए कृपा करके आप लोग मुझे एकांत में जाने दीजिए, ये बहुत अच्छा होगा। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाप्रभु अपने निकट के पार्षदों का दोषारोपण कर रहे हैं। इहा सबार वश प्रभु होए ये गुणे दोषारोपे छले करे गुण आस्वादने। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक दृष्टि से लग रहा है कि अपने भक्तों का दोषारोपण कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट सीम्स ही इज फाइंडिंग फॉल्ट, लेकिन वास्तव में वो दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कैसी स्तुति? दोषारोप छले कोरे गुण आस्वादने। महाप्रभु ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे भक्तों की भक्त वात्सल्यता इतनी अधिक है कि वो किस तरह मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हुए मुझे अपने प्रेम के वशीभूत कर देते हैं। दे जस्ट कंट्रोल मी बाय देयर लव, और इसलिए मैं भगवान होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी अपने निजी अंतरंग पार्षदों के प्रेम के वशीभूत बंध जाता हूं। अब सन्यासी होने के नाते मुझे सन्यासी का कुछ स्तर प्रदर्शित करना है, लेकिन जब मैं अपने अंतरंग पार्षदों के साथ रहूंगा तो वो मुझे नाना प्रकार के विषय भोग प्रदान करेंगे और फिर उसे स्वीकार करने के लिए मुझे सन्यासी के सबसे कठोर नियमों से च्युत होकर आदान प्रदान करना होगा. सो आई मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ स्ट्रिक्ट सन्यासी टू एक्सेप्ट द लव ऑफ माई डिवोटीज. तो ये तो ठीक है भक्त और भगवान के आदान प्रदान के बीच में, लेकिन मैं दक्षिण भारत में जा रहा हूं जहां नवीन लोग हैं और जो मुझे सन्यासी के रूप में देखेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि ये व्यक्ति सन्यासी के कठोर नियमों का पालन करेगा. और यदि इन लोगों ने मेरी चरित्र में तनिक मात्र आंच देखी तो उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगा और तब वो लोग कृष्ण भक्ति से दूर चले जाएंगे. इसलिए प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य कहते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर विद इन द मटेरियल वर्ल्ड वी मस्ट ऑब्जर्व द सोशल कस्टम्स टू अवॉइड क्रिटिसिजम्स बाय जनरल पॉपुलेस. कि जब तक हम इस जगत में हैं और जगत के लोगों से घिरे हुए हैं तो हमको सामाजिक प्रतिबंधों को पालन करना ही पड़ता है. और भगवान कह रहे हैं कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई बार अपने निजी अंतरंग प्रेमी पार्षदों से भी दूर होना पड़ता है, क्योंकि एक दृष्टि से भगवान के महान भक्तों का संग अनुकूल है भक्ति के लिए, लेकिन इस जगत में कोई भी वस्तु निरपेक्ष दृष्टि से प्रतिकूल या अनुकूल नहीं है, सब काल देश पात्र के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल माना जाता है. तो यहां चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जा रहे हैं और उस यात्रा में उनको अपने निकट के प्रेमी भक्तों का संग अनुकूल नहीं लग रहा, प्रतिकूल लग रहा है, इसलिए वो इस तरह आगे जा रहे हैं अकेले. तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. दोषारोप छले करे गुण आस्वादने. सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, देश काल और क्रम के अनुसार. तो यहां पे दूसरा ये है कि टू डेमोन्स्ट्रेट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ सन्यासी. तान समय तान महाभाग उपलभ्य वसोत्तम पूजयानास धर्मज्ञो देश काल विभागवित. भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे, शर से नख तक उनके पूरे देह में प्रत्येक स्थान पर शर के चिन्ह थे, बाण भेद दिए थे और उस बाणों की शैया पर लेटकर आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे. पूरे ब्रह्मांड भर से महान ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण पंच पांडव इत्यादि वहां आ गए भीष्म पितामह का दर्शन करने. और जैसे ही भीष्म पितामह ने इन सभी को देखा, मन में विचार आया कि किस तरह इनका स्वागत करूं, आवभगत करूं, क्योंकि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुसार किसी महान संत का विधिवत स्वागत करना धर्म का सिद्धांत है और यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई तो बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है. तो वो विचार करने लगे, अरे कृष्ण आए हैं, पांडव आए हैं, महान ऋषि मुनि संतगण आए हैं, इनका उचित प्रकार से स्वागत नहीं किया जाए तो फिर एक अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा. तो इसलिए यहां वर्णन आ रहा है, तान समेतान महाभाग उपलभ्य वसोत्तम पूजयान आस धर्मज्ञ. भीष्म पितामह धर्मज्ञ थे, जानते थे कि धर्म के सिद्धांत क्या है और इसलिए देश काल और पात्र के अनुसार उस धर्म के सिद्धांत को किस तरह से निरूपण करना है जानकर वो सोचने लगे, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर, मेरा सर पूरी तरह से इस स्थान पर अटक गया है, हिल नहीं सकता, लेकिन मेरे पूरे शरीर में केवल मेरी एक जिह्वा है जिससे मैं वाणी निकाल सकता हूं. तो भीष्म पितामह ने अपने वाणी के माध्यम से उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत किया और जब वाणी से उनका स्वागत किया तो तुरंत सभी लोग प्रसन्न हो गए। अर्थात उस समय जो भी उनके पास अनुकूल था, उपाय था, साधन थे, उसके अनुकूल, उसके अनुसार भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया। इसलिए देश काल विभागवित, तो देश काल और पात्र के अनुसार जो अनुकूल हो हमको वही स्वीकार करना चाहिए। जैसे हरिनाम संकीर्तन पाश्चात्य देशों में बहुत चलता था और काफी प्रसिद्ध था, लेकिन जब भारत में आए तो भारत में वर्णन आता है कि जब भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करने के लिए गए रास्ते पर और ट्रेन पर, तो लोग उनको 25 पैसे का डोनेशन देने लगे। तो वाकई प्रभुपाद को बोले, हम लोग जाते हैं लेकिन हम लोग कीर्तन करते साथ लोग आके चंदा दे के चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ये भारत है और भारत में बाहर कीर्तन करोगे लोगों को लगता है कोई भिखारी है, और इस तरह भिखारी मानकर आप लोगों को पैसा दे के लोग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आप वो कीजिए मत, ये उचित नहीं है। क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार पाश्चात्य देश में बाहर हरिनाम संकीर्तन दिन भर करो एक जगह खड़े होकर, तो लोगों को लगता है कोई अद्भुत है, रोमांचक लोग है, कहाँ से आए हैं, और आकर्षित हो जाते हैं लोग। लेकिन भारत में करोगे तो उनको लगता है कि तो पता नहीं बेचारे भूखे हैं और मांगते हैं, फिल्म का गाना के बदले कोई हरे कृष्ण गा रहे हैं, और इसलिए वो डोनेशन दे के चले जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने तुरंत उसको बंद कर दिया और उसके बदले में प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप चालू किया, क्योंकि प्रभुपाद को लगा मिशन के लिए देश काल पात्र के अनुसार भारत में ये अधिक अनुकूल है। एक और बार प्रभुपाद ने बताया, कुंभ मेला में प्रभुपाद बैठे थे और प्रभुपाद ने पूछा, कृष्ण भगवान क्यों है? तो एक भक्त ने कहा, क्योंकि गीता में कहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, गीता तो एक केवल किताब है, किताब तो कोई भी लिख देगा। तो दूसरे भक्त ने कहा, क्योंकि प्रभुपाद आप कहते हो। प्रभुपाद ने कहा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सटिया गया हूँ, कुछ भी बकता रहता हूँ। तो फिर भक्त ने कहा, फिर क्या? तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि हम अनुभव करते हैं हरे कृष्ण जप करने पर, तो वो अनुभव के कारण हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। अगले महीने प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में थे और कुछ स्कॉलर लोगों के साथ बातें कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने फिर प्रश्न किया, कृष्ण भगवान क्यों है? तो ये भक्त वहां फिर से था, तुरंत उसने बोला, क्योंकि हम अनुभव करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, क्योंकि गीता में कहा है। तो अवाक रह गया, ये क्या, मैं तो वही आंसर वहां सुना था, उसको यहां रिपीट कर दिया। प्रभुपाद बोले, नहीं, ये लोग स्कॉलर लोग हैं, इन लोगों का अनुभव से कुछ लेना देना नहीं है, इन लोगों का किताब से बहुत कुछ लेना देना है, इसलिए यहां पर ये उचित है। तो इसलिए ये कोई एक स्टीरियोटाइप फॉर्मूला नहीं है कि एक बार चल गया तो सब जगह चला दो। वास्तव में देश काल और पात्र के अनुसार हमको विचार करना है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला चलेगा। देश काल विभागवित, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने देखा कि दक्षिण भारत की यात्रा में अपने निकट के अनुयायियों को लेके जाने से मुझे अपने संन्यास धर्म के कठोरता पूर्वक पालन करने में बाधा बनेगी, इसलिए इनको यहीं पर छोड़ के जाना ज़्यादा उचित होगा। तो ये दूसरा कारण है, टू डेमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ अ सन्यासी। तीसरा कारण है महाप्रभु का दक्षिण भारत की यात्रा करने का, टू इनॉग्रेट द संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने हेतु महाप्रभु दक्षिण भारत में गए। अब तक महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में केवल आंतरिक पार्षदों के साथ ही यह हरिनाम संकीर्तन की लीला क्रीड़ा की थी और सामूहिक रूप से सबके समक्ष, समाज के सामने, जन सामान्य के नेत्रों के समक्ष ये हरिनाम संकीर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने पार्षदों से आज्ञा स्वीकार करने के पश्चात आलारनाथ गए और आलारनाथ में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने यह हरिनाम संकीर्तन आरंभ किया। तो दक्षिण भारत में जाने से पूर्व और जगन्नाथपुरी से निकलकर जो पहला महाप्रभु का स्टॉप था वो अलारनाथ, और वहां उच्च स्वर में गरजते हुए चैतन्य महाप्रभु ने ये कीर्तन आरंभ किया। तो कबीरराज गोस्वामी कहते हैं, चौदी के ते सब लोग बोले हरी हरी, प्रेम वेश मध्य नृत्य करे गौर हरी। चारों दिशाओं में लोग हरि का नाम ले रहे थे और प्रेम के आवेश में मदमत्त होकर बीचों बीच श्री गौरांग महाप्रभु अपने नृत्य लीला प्रदर्शित कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो उनके श्यामल सुंदर वर्ण को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं और उनका देह नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त होता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में जब नृत्य करते हैं तो उनका रूप लावण्य कुछ और है और उनके आभूषण भी कुछ और हैं। कबीरराज गोस्वामी कहते हैं, कंचन सदृश देह अरुण बसान, पुलक श्रुकंप स्वेद ताहाते भूषण। महाप्रभु का देह तपाए हुए सोने की तरह चमचम चमक रहा था और उसके ऊपर अरुण वसन लाल रंग का उनका सन्यास का कपड़ा उनके अंग कांति को और शोभायमान कर रहा था। और उनके आभूषण क्या थे? पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण। नाना प्रकार के प्रेम के चिन्ह वो प्रदर्शित कर रहे थे, कीर्तन करते हुए उनकी उनके पूरे देह से अश्रुधारा बह रही थी, उनका देह कंपित हो रहा था और ये सभी उनके शरीर के भूषण थे। विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो वास्तव में आभूषण एक ऐसा वस्तु होता है जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ठीक विपरीत होता है। वो ये कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब कोई आभूषण का मिलन होता है तो श्री कृष्ण के देह से के सौंदर्य से आभूषण का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसलिए यहां पर महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो उनके आभूषण को देखकर लोग विस्मित हो रहे थे। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासी ललोक स्त्री वृद्ध अबाल। तो कबीरराज गोस्वामी कहते हैं, कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे और कुछ लोग बहुत प्रेम से उच्च स्वर में श्री कृष्ण गोपाल का नाम ले रहे थे। प्रेमे ते भासिल लोक, लेकिन ये सभी लोग कृष्ण के कीर्तन के प्रेम में पूरी तरह निमग्न थे। प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल, नाना प्रकार के लोग उस कीर्तन में भाग ले रहे थे। स्त्रियां थी, वृद्ध थे और नन्हे नन्हे शिशु भी उस प्रेम के संकीर्तन में भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे। तो कई बार हमारे हरे कृष्णा के कीर्तन को देखकर लोगों को लगता है कि ये केवल जवानों के लिए है, क्योंकि इतना भयंकर तरीके से कीर्तन होता है और इस तरह से लोग नाचते हैं कि पास आने पर लगता है कि हड्डी पसली टूट जाएगी, और कई बार घबरा कर लोग दूर से प्रणाम करके देखते हैं, और नए लोग तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हमारे चौपाटी में संडे का इतना भयंकर कीर्तन होता था पहले कि एक बुधवार का कार्यक्रम हमारा होता था, वेडनेसडे प्रोग्राम, तो कई लोग जो संडे फीस्ट से डरते थे वो वेडनेसडे रात को आते थे प्रोग्राम में, और वो ऐसे लोग थे जिनको शांत रस पसंद था और उनको लगता था कि बुधवार के रात को बड़ा बैठ के कीर्तन होता है, अंधेरा करके लेक्चर भी शांत होता है, कीर्तन भी शांत होता है, वेडनेसडे का प्रोग्राम अच्छा है, ऐसा सोच के वो आते थे। एक बार बुधवार के दिन भक्ति तीर्थ मारा जा गए सुबह, और शाम को दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं था तो उनको मैंने शाम का प्रोग्राम करने को कह दिया। तो 7:30 को प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन उस दिन 7 बजे का गौर आरती वो लीड करना शुरू कर दिए। 7 बजे का गौर आरती शुरू हुआ, 8:30 तक गौर आरती चल रहा था। और कोई सामान्य नहीं, जब भक्ति तीर्थ महाराज नृत्य करते हैं तो आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन राधा गोपीनाथ और हुंडी बॉक्स से लेकर प्रभुपाद तक और प्रभुपाद से हुंडी बॉक्स तक, आगे पीछे और हाथ में बड़ा सा डमरू लेके, और डमरू के ऊपर डम जोर जोर से डम 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 करके, वो एक उनका लकड़ी है उससे मारते भी रहते हैं, और आसपास कोई नाचता नहीं है तो उसको भी एक मार देते हैं कभी प्रेम से कि चलो भाई तुम भी आओ नाचो बोलो। तो उस दिन अपना रेगुलर बुधवार का क्राउड एज यूजुअल शांत रस के लिए तैयार होके आया था। सब लोग अपना अपना सूटकेस ब्रीफकेस सब लेके आके बैठे थे, आंख वाँख बंद कर बैठे थे। अचानक गौर आरती शुरू हुआ, सब बोलो ये क्या चल रहा है। और लिटरली जो रेगुलर अपना वेडनेसडे का क्राउड था उस दिन, सब दीवार के कोने कोने में खड़े होके आंखें बड़ी बड़ी करके डर पे ऐसे ऐसे देख रहे थे कि ये तांडव कब बंद होगा और तब हम फिर शांति से बैठ सकते हैं। घबरा कर देख रहे थे ये क्या हो गया अचानक। फिर वो लोग फिर चेक करने लगा, आज बुधवार ही है कि दूसरा कोई दिन है कि आज ये ऐसी लीला कैसी हो गई, कभी देखा नहीं था। तो कई लोग को जिनको मैं जानता था और कल्टीवेट करता था उनको कोने में लिया, बोले वो आज बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, ये हमारा कीर्तन है और ये थोड़े देर में ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और वो लोग जा भी नहीं सकते थे क्योंकि प्रसाद 9:30 को ही बढ़ता था और वो लोगों का प्लानिंग ऐसा रहता था कि रात का डिनर करके ही जाना है, तो फिर क्या करें, कीर्तन के और प्रसाद के बीच में फंस गए थे वो। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है, केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल। तो प्रतापपुत्र महाराज भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के कीर्तन को देख के, कल वो हम लोग चर्चा करेंगे, प्रतापपुत्र महाराज सर्वम भट्टाचार्य के पीछे ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरिध्वनि कहाँ नहीं देखी ऐछे कहाँ नहीं सुनी। अरे भट्टाचार्य, ये कीर्तन ऐसा नृत्य ऐसे हरि कीर्तन जगन्नाथपुरी में तो सैकड़ों कीर्तन के ग्रुप्स आते हैं और यहाँ कीर्तन करके जाते हैं। मैंने कई व्यावसायिक ग्रुप्स को देखा है जो बहुत सारा कीर्तन करते हैं, बहुत मधुर कीर्तन करते हैं और अलग अलग शैली में कीर्तन करते हैं, लेकिन ऐसे प्रेम इतना प्रेम ऐसा नृत्य और ऐसी हरि ध्वनि कहाँ नहीं देखी, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा और कभी ऐसा नहीं सुना, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं क्यों, क्योंकि व्यावसायिक कथावाचक और कीर्तनकार के निजी जीवन का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जो हरे कृष्ण आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो 16 माला जप और 4 नियम पालन करते हैं। जो नियम पालन करते करते जब कीर्तन करेगा और कथा करेगा तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से प्रतापपुत्र महाराज जैसे VIP राजा के ऊपर कीर्तन का प्रभाव पड़ रहा था। तो इसलिए भट्टाचार्य इस बात को सुनकर कहे, भट्टाचार्य कहे ए, जो चैतन्य महाप्रभु के जो कीर्तन था वो उसका वर्णन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य अपने प्रतापपुत्र महाराज को कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये कोई सामान्य नहीं है, ये असामान्य कीर्तन का प्रदर्शन है। और ये क्या है, ये बहुत बढ़िया उस शब्द का वो प्रयोग करते हैं, भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है, क्या है ये, प्रेम संकीर्तन, ये कोई सामान्य नहीं है। इसलिए यहां पर ये प्रेम संकीर्तन का उद्घाटन दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम किया और इसमें यह दिखा दिया, दर्शा दिया कि नाना प्रकार के नाना श्रेणी के लोगों को इसमें वो भाग लेने का अवसर देते हैं। तो इस कीर्तन को देखकर नित्यानंद प्रभु भी भाव विभोर हो गए और नित्यानंद प्रभु सभी भक्त लोगों को कहने लगे देखि नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे ऐ रूप नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि ये जो प्रेम का कीर्तन आप लोग देख रहे हो आज, ऐ रूपे नृत्य होबे आगे ग्रामे ग्रामे, हर गांव में हर शहर में ऐसा कीर्तन होगा। सो दिस वॉज अ प्रिडिक्शन बाय लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। ये एक भविष्यवाणी थी नित्यानंद प्रभु की, ऐ रूप नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दिस प्रिडिक्शन ऑफ नित्यानंद प्रभु इज एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर प्रीचिंग। If devotees simply follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu will be success. तो इस तरह देश विदेश में शीला प्रभुपाद ने संघर्ष करके महाप्रभु के इस मिशन को फैलाया। शीला प्रभुपाद की, और विश्व के कोने कोने में लोग किताब वितरण करते हैं, कीर्तन होता है, प्रचार होता है। कल कांजूर मार्ग में बंबई में रथ यात्रा हो रहा था, और जब मेरा रात को प्रवचन चल रहा था 9:30 बजे, उसी समय न्यूयॉर्क में जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ रहे थे, क्योंकि 10:30 घंटा पीछे चलता है। तो जब यहां 9:30 बजा तो वहां दिन के 11:30, 11:12 बजे थे। तो जब यहाँ जगन्नाथ जी का आरती समाप्त होके, जब सब लोग जगन्नाथ का दर्शन कर लिए और यहाँ कीर्तन समाप्त हुआ, वहाँ कीर्तन आरंभ हो गया और जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ गए। एक ही दिन में देखो दुनिया के कोने कोने में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया, जगन्नाथ जी की। तो ये कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद की कृपा से। 1975 में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के टेम्पल प्रेसिडेंट को आदेश दिया कि आप 5th एवेन्यू में रथ यात्रा करवाने का प्रयास करो। 5th एवेन्यू अर्थात सबसे सबसे अधिक प्रतिभाशाली और प्रभावशाली और बड़ा ही सुसंपन्न स्थान, जहां पूरे विश्व के आर्थिक उद्योगपतियों का वहां पर बोलबाला चलता है। ऐसे जगह पर अनुमति मिलना लगभग असंभव, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरी इच्छा है और तुम जाओ। और वो टेम्पल प्रेसिडेंट भी सोच रहा है कि पता नहीं ये कैसे होने वाला है। तो सीधा म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में, पुलिस का जो चीफ था उसके ऑफिस में घुस गया। तो सबसे बाहर जो संतरी था उसने रोक दिया, तो बोला ए कहाँ जा रहे हो? एक तो अपना वेशभूषा देख के आधे लोग रोक देते हैं, तो उसको रोक दिया। तो उसने कुछ 2-4 शब्द कहे, माना नहीं, अंदर से जगन्नाथ का महाप्रसाद निकाला दे दिया। जगन्नाथ का प्रसाद वो संतरी खाया, बोला चलो, तो उसको एंट्री दे दिया। अंदर अंदर घुस गए, दूसरा आदमी खड़ा था उसने रोका, 2-4 शब्द कहे, वो भी नहीं माना, उसको भी प्रसाद पकड़ाया, वो भी प्रसाद लेके बोला ठीक है जाओ अंदर जाओ। और अंदर जाते 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 सीधा पुलिस चीफ के सामने आके बैठ गए वो, केवल प्रसाद की दया से। तो अंदर आ गए तो पुलिस चीफ उसको देख के बोला तुमको यहां तक आने कौन दिया? तो बोले आपके ही लोगों ने आने दिया। तो पुलिस चीफ को लगा शायद हो सकता है कोई बड़ा वीआईपी होगा, कि इतने अंदर तक आ गया मतलब बहुत कठिन है किसी को यहां तक पहुंचना। तो बोला बात क्या है? बोले हम लोगों का हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, पूरे जगत के स्वामी है जगन्नाथ। फोटो दिखाया और पुलिस चीफ ने देखा बाप रे कौन है, जगत का नाथ है, कभी सुना ही नहीं मैंने। बोले हाँ यही जगत के नाथ है, और इनका हमको रथ यात्रा निकालना है और न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में, जिसका परमिशन का अंतर्गत आपके एरिया में आता है, और उसके लिए हमको पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए और पुलिस के लोग भी साथ में चाहिए जिससे कि रथ ठीक ठाक चले। तो ये पुलिस चीफ इसको अवाक होके देख रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है ये, यहाँ तक हमने आज तक कभी किसी को अनुमति नहीं दी यहाँ पर। तो बोले बोले ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले शांति के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हरिनाम संकीर्तन करना है हमको और यहाँ पे रथयात्रा बहुत आवश्यक है। और फिर प्रसाद भी पकड़ा दिया उसको। तो पुलिस चीफ भी प्रसाद लिया और हाथ में पेन लेकर उसमें हस्ताक्षर करने लगा, परमिशन ग्रांटेड। और ऐसा हस्ताक्षर करते समय कहता है, पता नहीं मैं ये ऐसा परमिशन क्यों दे रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा दिया नहीं और देना भी नहीं नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि देना चाहिए, ले लो करके दे दिया। तो वास्तव में जगन्नाथ स्वामी ने अंदर से उसको पूरा ऐसा घुमाया कि न चाहते हुए भी उसके हाथ चल गए और भक्तों ने वो परमिशन ग्रांटेड वाला पेपर लाकर लैमिनेट कर दिया और 1975 से 2006 तक अभी तक वही चल रहा है पेपर। तो वो पुलिस चीफ तो 6 महीने में आउट हो गया। तो दूसरा पुलिस चीफ आया और उनको मालूम पड़ा कि रथ यात्रा के दिन पूरा 5th Avenue ब्लॉक होता है, मतलब पूरा ट्रैफिक बंद और केवल जगन्नाथ जी का रथ चलता है। तो उसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, बोले ये कौन है यार, ये जगन्नाथ क्या है ये? तो बोले वो पिछला आदमी था, उसने वो परमिशन दे दिया। तो सब लोगों ने जेरोक्स कॉपी उसको दिखा दी, देखो परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। तो बेचारा इच्छा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, दांत चबा के चुपचाप बैठ गया। और उसके बाद कितने ही पुलिस चीफ आए और बहुत लोगों की इच्छा है कि इसको ख़त्म करो, लेकिन अमेरिका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बहुत बड़ी बात है। तो एक बार किसी ने अनुमति दे दी तो उसको रोकने जाओ तो पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा। इसलिए केवल वो एक जो 1975 में परमिशन मिल गया उसके दया से जगन्नाथ की गाड़ी अब भी चल रही है। और 5th Avenue में वो भी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर साथ में चलते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा के रथ के साथ। तो ये श्रीला प्रभुपाद के दया है। और इस तरह नित्यानंद प्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे ऐ रूपे नृत्य होवे आगे ग्रामे ग्रामे, हर ग्राम में हर शहर में इस तरह ये हरिनाम संकीर्तन होगा, ये नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है। तो अब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में और आगे बढ़ने लगे। मत सिंह प्राय प्रभु कौरिला गमन प्रेम वेश याय करी नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह या शेर की तरह गरजते हुए प्रेम के आवेश में पागल होकर घूम रहे थे, प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में, छोटे छोटे गांव में, शहर में। तो अब किस तरह से उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया, तो ये चौथा लेसन है या शिक्षा है। तो तीसरी शिक्षा क्या है? संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन, टू इनॉग्रेट द संकीर्तन मिशन। और चौथी शिक्षा है टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीचिंग, प्रचार कैसे करना चाहिए, यह शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में लीला किए। कोटक सोने रही प्रभु तारे आलिंगिया विदाय करिला प्रभु शक्ति संचारिया। तो महाप्रभु सबसे पहले किसी को रोक लेते और उनको आलिंगन करते। कोटक सोने रही प्रभु तारे आलिंगिया, और जैसे वो आलिंगन करते उस व्यक्ति के अंदर शक्ति आ जाती, और शक्ति प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ देते। विदाय करिला तारे शक्ति संचारिया, और वो जब विदा करते तो व्यक्ति शक्ति के साथ अपने गांव चला जाता। तो ये प्रचार के 10 महत्वपूर्ण अंग हैं। देर आर 10 स्टेप्स इन प्रीचिंग विच महाप्रभु एस्टैब्लिशेस। फर्स्ट, महाप्रभु वुड एम्ब्रेस, आलिंगन करते। एंड सेकेंड, एम्पावर। सो एम्ब्रेस मीन्स वॉट? इट्स नॉट लिटरल। एम्ब्रेस मीन्स टू गिव एसोसिएशन, संग देना। तो महाप्रभु अपना संग देते और संग देकर उनको शक्ति प्रदान करते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वॉट इज दिस शक्ति? तो प्रभुपाद कहते हैं, दिस शक्ति इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चित एंड आनंद पोटेंसी। तो स्पिरिचुअल पोटेंसी इज द एसेंस ऑफ प्लेजर एंड नॉलेज पोटेंसी. वन इज एम्पावर्ड विद भक्ति बाय दीज टू पोटेंसीज. सो व्हेन वी से समवन इज एम्पावर्ड, देन इज एम्पावर्ड बाय दीज टू पोटेंसीज ऑफ नॉलेज एंड प्लेजर. तो इस तरह से चित और आनंद की शक्ति प्राप्त करके वो आगे बढ़ते. तो प्रभुपाद एक और सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि एनीवन फेवर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एम्पावर्ड बाय द भक्ति शक्ति, यू कैन ओनली प्रीच बाय डिवाइन ग्रेस. जब तक ये शक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक प्रचार संभव नहीं. कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन. तो ये सबसे पहले इस तरह वो शक्ति प्रदान करते. तो जो लोग प्रभुपाद के साथ संपर्क में आए हरे कृष्ण आंदोलन के आरंभ के दिनों में, उनके अंदर भी ऐसी शक्ति आ गई थी केवल प्रभुपाद के संपर्क स्थापित होकर. तो उस समय प्रभुपाद ने कहा कि हम पूरे विश्व भर में प्रचार करेंगे. तो एक भक्त, 1966 की बात है, उनके पास ज्यादा धन नहीं था, एक पुराना टूटा फूटा, बिल्कुल उसके कांच भी फूटे और उसका स्टीयरिंग व्हील भी ठीक से नहीं चल रहा था और अंदर कोई सीट भी नहीं, केवल एक ड्राइवर का सीट, ऐसा बिल्कुल टूटा फूटा फटीचर बस लेके आए और प्रभुपाद को लेके आए. और प्रभुपाद पूछे ये क्या है, तो बोले वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी के लिए हमारा बस है ये. प्रभुपाद देखे अचरज में पड़ गए, बोले बाप रे खतरनाक दिखता है ये. प्रभुपाद अंदर गए, प्रभुपाद के बैठने के लिए सीट नहीं, तो एक भक्त मंदिर के अंदर से लाकर एक चेयर लेके आया और बिठा दिया और दो भक्त पैर पकड़ के बैठ गए कि गाड़ी चलेगी तो सीट हिलेगा. और फिर ड्राइवर ने इग्निशन लगाया, ड्राइवर के सामने भी कांच नहीं, पूरा एयर अनकंडीशन, पूरा आर पार. तो इग्निशन जब घुमाया तो इंजन तो स्टार्ट हुआ लेकिन साथ साथ डैशबोर्ड से धुआं निकलने लगा. ऐसा धुआं ऐसे आने लगा तो प्रभुपाद देखे और बोले लुक्स लाइक एन इंडियन बस, भारत के बस की तरह लग रहा है. और वो भक्त जो ड्राइविंग कर रहा था उसने केवल भारत से प्रभुपाद को ही देखा था, तो उसको लगा भारत से जो भी होगा बहुत महान होगा, तो प्रभुपाद बस की स्तुति कर रहे हैं उनको लगा. तो प्रभुपाद को कहा थैंक यू प्रभुपाद. बाद में जब वो भारत आया तब समझा कि उस दिन प्रभुपाद ने कहा वो वास्तव में स्तुति नहीं थी. तो प्रभुपाद पूरा टूर लेने के बाद बोले ये प्रचार का आइडिया अच्छा है लेकिन वर्ल्ड संकीर्तन के लिए इससे थोड़ा अच्छा बस होगा तो अच्छा रहेगा. लेकिन प्रभुपाद ने क्या देखा, केवल एक चीज देखा, उत्साह, एंथुजियाज्म. इफ एनीवन हैड एंथुजियाज्म प्रभुपाद वुड एनकरेज देम. बाकी कोई योग्यता हो ना हो, यदि उत्साह हो तो उत्साह के आधार पर वो उनको शक्ति प्रदान करते. तो ये उनकी विशेषता थी. तो उसके बाद रॉक कॉन्सर्ट वगैरह में भी उनको निमंत्रण दिया जाता था तो प्रभुपाद को बुलाते थे. तो प्रभुपाद कई बार जाते थे तो उसको देखकर कुछ भक्त लोग प्रभुपाद को बोले हम भी नाइट क्लब में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए. प्रभुपाद ने कहा जाओ लेकिन वापस लौट के भी आना है, जाना बहुत आसान है. लेकिन कई लोग उस समय केवल वो शक्ति प्राप्त करके ऐसे ऐसे जगह गए और पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर किस तरह से प्रचार किया, ये एक बड़ी अभूतपूर्व घटना है जो आज तक कहीं पर हुआ नहीं. अफ्रीका जैसे स्थान में जाकर प्रचार कर दिया जहां पर प्रचार करना इतना कठिन है. प्रभुपाद स्वयं गए और जिस दिन गए प्रभुपाद के सारे कपड़े लोगों ने चुरा लिए. अगले दिन प्रभुपाद क्लास के लिए बैठे तो देखा सामने बैठे लोगों ने कपड़े पहने थे जो उनके अफ्रीका के भक्त थे. प्रभुपाद ने ओम नमो भगवते के बाद पहला कहा गुरु का कपड़ा चुराना नहीं चाहिए. यहां से भागवत की आरंभ हुई. लेकिन किसके पास इतना वो था कि इतना धीरज था कि इस तरह पर वो प्रचार कर पाए, है कि नहीं. शक्ति संचार या भक्ति तीर्थ महाराज वहां प्रचार करते थे तो कितनी उनके समस्याएं होती थी, कई लोग जादू टोना फेंकते थे उनके ऊपर ऑडियंस में बैठकर, है कि नहीं? भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है, स्पीकर को इसका डर नहीं रहता कि कोई मेरे ऊपर जादू टोना करेगा क्या। वहां बैठ के लेक्चर दे रहे हैं तो ऑडियंस में से बैठकर लोग जादू टोना करेंगे, तो आधा शक्ति उनका उसमें जाता था अफ्रीका में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, तीन चार फ्लाइट कैंसिल हो गए, तो चार फ्लाइट के लोग एक साथ बैठे थे और एयरलाइंस ने एक केवल एयरप्लेन जुगाड़ किया। अब चार प्लेन के पैसेंजर बैठे हैं और एक प्लेन तैयार हुआ है जाने के लिए, तो अब कौन उसमें घुसेगा? तो एयरलाइन ने अनाउंस किया, चलो सब लोग ये यहाँ पर जो कमरा है यहाँ से लेकर एयरप्लेन तक की दूरी भाग के जो पहले 100 लोग पहुँचेंगे रेस लगाओ। जो पहले 100 लोग पहुँचे वो घुस गए अंदर और रेडी गेट सेट गो करके सब लोग भागे, और भक्ति तीर्थ महाराज भी भागे ऐसे। तो बोले क्या करें, अगर वहाँ प्रचार करना है तो ये सब संघर्ष करना ही पड़ता है। एक बार बड़ा सा प्लेन था, चल नहीं रहा था, तो अनाउंसमेंट किया, छोटा सा वो प्लेन था, चार्टर प्लेन जैसा था छोटा सा। बोले अब प्लेन को चलाने के लिए सबको धक्का मारना है, और सब पैसेंजर बैठ कर धक्का मार रहे हैं। भारत में अपन धक्का मारते हैं गाड़ी वाड़ी को, लेकिन पूरा प्लेन को ही धक्का मार रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह ऐसे ऐसे कठिन स्थानों में जाकर प्रचार करना पूरे विश्व भर में कितना कठिन है, लेकिन प्रभुपाद से शक्ति प्राप्त करके लोग ये कर पाए। तो अब तीसरा स्तर है प्रचार का कि महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करके ये लोग अपने अपने घर गए। अपने अपने जब घर पर गए, निवास स्थान पर गए, तो इनके अंदर क्या परिवर्तन लोगों ने देखा? सही जन निज ग्रामे कोरिया गमन, कृष्ण बोले हासे कांदे नाचे अनुक्षण। अपने अपने गांव में जाकर ये लोग कृष्ण का नाम लेकर हंसने लगे, गाने लगे, नृत्य करने लगे। हासे कांदे नाचे अनुक्षण। तो इस तरह उनके अंदर परिवर्तन आया। सो द थर्ड स्टेप इज एंजॉय, अर्थात एक आनंद की अनुभूति। सो फर्स्ट इज देयर एम्ब्रेस्ड, देन एम्पावर, देन एंजॉय, अर्थात जो ये शक्ति प्राप्त करके जाए उसके अंदर कुछ आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तभी फिर लोग देखकर आकर्षित होते हैं और फिर भक्ति की ओर ध्यान खींचता है उनका। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से ये अनुभव बहुत आवश्यक है। तो जो भी आप भक्ति में कार्य करें उसमें आपको आनंद आना चाहिए। कम से कम कोई एक सेवा होनी चाहिए जिसमें आपको आनंद आए, कम से कम एक सेवा होनी चाहिए। प्रसाद को छोड़कर, प्रसाद को छोड़कर दूसरी कोई एक सेवा होनी चाहिए जो आंख बंद करे तो आपको लगे आनंद आता है कि नहीं? और ऐसा नहीं है तो प्रयास कीजिए और ऐसे लोगों के साथ संग कीजिए जिनका भक्ति में आनंद है। कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुक्षण, तो उनके उत्साह को देखकर, उनके आनंद को देखकर फिर लोग आके पूछते थे, क्या हुआ भाई, तुम पहले ऐसे तो नहीं थे? जब से हरे कृष्ण में जाके आए हो कुछ अलग अलग दिखते हो, कुछ अलग अलग बोलते हो, और धीरे धीरे हेयर स्टाइल भी अलग अलग हो रहा है, क्या बात है? तो अब उनको प्रचार करने का अवसर मिला। तो पहले महाप्रभु अपना नाचते हुए जा रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को आलिंगन किया, वो आदमी अपने गांव में गया, अब वो नाचने लगा अपने गांव में, तो सब लोग बोल रहे क्यों उछल रहा है इतना। तो अब वो बता रहा है, यारे देखे तारे कहे कहा कृष्ण नाम, एमत वैष्णव होइला सब निज ग्राम। तो वो कहने लगा कि ये कृष्ण नाम का प्रभाव है, कृष्ण के नाम में बड़ा रस है, कृष्ण के नाम में बड़ी शक्ति है, एमत वैष्णव होइला। तो ये सुनकर सब लोग बोले, अरे मुझे भी आनंद चाहिए, मुझे भी वैसे ही बनना है जैसे तुम बने हो, इतना आनंद मुझे भी चाहिए। तो बोले ठीक है, कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ये महामंत्र के अंदर इतनी शक्ति है। तो अपना जयानंद प्रभु जब प्रचार करते थे तो एक बार भक्तों ने सुना जोर जोर से कीर्तन की आवाज आ रही है, और भक्त लोग अंदर जाके देखे केवल वो अकेले थे और एक और आदमी था, दोनों ऊपर नीचे नाच रहे, ऊपर नीचे कूद रहे। तो उसको देखकर अचंभित हो गए, एकांत कमरे में दो लोग बस नाच रहे हैं ऊपर नीचे। तो इस तरह का आपका भक्ति का अनुभव होना चाहिए कि उस अनुभव को देखकर लोग कहें कि मुझे ये हरे कृष्ण में आना है। तो उसके बाद आप जो फिलॉसफी बताओ, ये बताओ वो बताओ, वो सब उनको समझता है। लेकिन आपका अनुभव ही बिल्कुल नकारात्मक है और अंदर ही अंदर आप परेशान हो, तो दुनिया भर का फिलॉसफी लगा दो लेकिन फिर भी सामने वाला सोचेगा वो सब ठीक है लेकिन तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है। तो इसलिए कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुक्षण, आर यू हैप्पी इन हरे कृष्णा मोमेंट, दैट इज द मेन पॉइंट इन प्रीचिंग। तो इसलिए हमको इस तरह से अपना अनुभव सकारात्मक बनाना है और पूरी तरह भक्ति भाव में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप बोलो अरे मेरे अंदर तो आनंद इतना नहीं है तो लगता है मुझे प्रचार बंद कर देना चाहिए, और कल के दिन आप अपने इंचार्ज को जाके बोल दो प्रभु ये प्रोग्राम कोई और करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि तो हंसे नाचे का अनुक्षण नहीं हो रहा है, मैं हंस नहीं रहा हूँ, नाच नहीं रहा हूँ, तो इसलिए जिस दिन मैं हंसूंगा और नाचूंगा उस दिन जाऊंगा, तब तक कोई और संभालो। ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि भक्ति में आपको किस तरह से इस भक्ति के तत्व अर्थात हियरिंग चैंटिंग और बाकी वैष्णव सत्संग ये सब नियम पालन करके ठीक प्रकार से दूसरों को देना है। तो अब आगे आ रहा है कि प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में हाउ टू बिकम एन एम्पावर्ड प्रीचर। प्रभुपाद राइट्स इन द पर्पोट टू पॉइंट्स, शक्ति प्राप्त प्रचारक कैसे बने, दो बातें। पहला, वन मस्ट बी फेवर्ड बाय लॉर्ड एंड गुरु, गुरु और भगवान की कृपा है कि नहीं। तो कृपा मिल गई तो कृपा प्राप्त करके सोने जाना है, चलो कृपा मिल गई बहुत हो गया, नहीं। दूसरा है आपको प्रयास करना है, रिक्वेस्ट एवरीवन टू चैंट हरे कृष्ण। तो जैसे दामोदर लीला में वो दो उंगली है, एक भगवान की कृपा और एक अपना प्रयास, वैसे ही गुरु और कृष्ण की कृपा और अपना प्रयास। जब दोनों बात करेंगे तो हम शक्ति प्राप्त प्रचारक बन सकते हैं। तो इसलिए यहां पर पुना में इतना हम परिवर्तन देख रहे हैं क्योंकि यहां पर राधेश्याम प्रभु का इतना उत्साह है कि उनके उत्साह को देखकर कितने लोग खिंच जाते हैं कि क्या बात है, इतना आनंद उनको कहां से आ रहा है। इतना उनका हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, दिन रात कर्मठ प्रयास करते रहते हैं लेकिन फिर भी इतने उत्साह के साथ प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का पालन कर रहे हैं, वो देखकर ही कई लोग लगे हुए हैं। तो ये एक शक्ति प्राप्त प्रचारक का चिन्ह है, लक्षण है। और भक्ति के आरंभ के दिनों में जब हम लोग IIT में थे तो इस तरह हम सभी मिलकर प्रचार करते थे और एक दूसरे को देखकर काफ़ी उत्साह मिलता था। तो इस तरह जब आप दूसरों को देखोगे तो उनके अनुभव को देखकर आपको उत्साह मिलेगा। तो सत्संग बहुत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों का मूड बदलता रहता है। आज हम लोग आनंद में हैं तो कल बिल्कुल परेशान हैं, और फिर दो दिन बाद फिर आनंद आएगा, फिर परेशान रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सबका वेव एक साथ नहीं चलता। आज हम आनंद में हैं तो वो दुखी है, और कल हम दुखी हैं तो वो आनंद में है। तो जब हम दुखी हैं तो आनंद वाले को देखकर हमको आनंदित होना चाहिए, चलो कल के दिन मेरा भी ऐसा होगा। और जब मैं दुखी हूँ और वो आनंदित है तो मैं उसको देख लूँ। इस तरह एक दूसरे के साथ रहकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर एक साथ सबका आनंद उठता था और एक साथ सबका मूड ऑफ होता था तो बड़ी परेशानी हो जाती थी, है कि नहीं? कीर्तन हो रहा है और कोई नाच ही नहीं रहा है, सब लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ अच्छा है, आज अपना खड़े होने का मूड है तो किसी का नाचने का मूड है, तो कीर्तन में कुछ तो चल रहा है। तो ऐसे मन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्त वो है जो अपने मन के आंदोलन से प्रभावित नहीं होता, लेकिन चलता चला जाता है चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हमको आगे बढ़ना है उत्साहपूर्वक, और ये इसका लक्षण है। तो आगे कहते हैं, जब ये लोग दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये गांव पूरा, अब एक पूरा गांव भक्त बन गया। एक व्यक्ति आया था महाप्रभु को मिला, वो अपने गांव गया, और उस व्यक्ति ने अकेले ने पूरे गांव को अब भक्त बना दिया है। अब दूसरे गांव का एक आदमी आता है उस गांव में और देखता है कि जो भी मिल रहा है, बोला हरि बोल कह रहा है, हरे कृष्णा कह रहा है, तिलक लगाया है, कंठीमाला लगाया है, और एक दूसरे से बात करते समय हरे कृष्णा कर रहा है। तो बोले क्या चल रहा है ये गांव में, पहले तो सब नॉर्मल थे लोग, अभी अचानक ये क्या हो गया, इनको किसने क्या पट्टी पड़ा दी। तो फिर दूसरे गांव का आदमी आकर क्या वर्णन होता है, ग्रामांतर होते देखते आई लयत जान, तारा दर्शन कृपाए होए तारा सम। तो वो आके वहां उस गांव में अकेला है, और ये पूरा गांव भक्तों का है, तो पूरे भक्तों के गांव में एक आदमी आएगा तो उसका क्या हाल होगा। तो जहां जाता है प्रसाद ही पाता है, जिसके पास जाता है वो गीता ही सुनाता है, भागवती सुनाता है। तो जब तक 3-4 दिन वहां गांव में निकालता है, उसका भी थोड़ा हेयर स्टाइल बदल ही जाता है। ग्रामांतर होते दखिते याते यत जान, तार दर्शन कृपाए होए तारा सम। उनके दर्शन के कृपा से वो भी वैसा ही बन गया। तो वो भी जब गांव से जाता है तो तिलक लगा के, धोती वोती लगा के, हाथ में बीड़ बैग लेके, हरे कृष्ण नाचते हुए अपने गांव में जाता है। तो ये गांव नंबर 2 है। गांव नंबर 1 तो खत्म हो गया, वो तो पूरा डिवोटी हो गया। अब ये दूसरे गांव का आदमी जा रहा है अपने गांव, और वो जब अपने गांव में एंट्री मारता है तो ये 5वां स्टेज है, एक्सचेंज होता है, और 6ठा है एक्सपेंड। अब उस गांव में क्रांति फैलेगी। सेयाई ग्रामेर लोक वैष्णव करया, अन्य ग्रामे आसी तारे देखी वैष्णव होया। तो वो अपने गांव में जाता है, से यही ग्रामेर लोक वैष्णव करया, तो उसने दूसरे गांव के सभी लोगों को उसने वैसे वैष्णव बना दिया। और अब गांव नंबर 2 में दूसरे गांव का एक आदमी आता है तो वो भक्त बन के जाता है, और वो गांव नंबर 3 को भक्त बना देता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं, सेयाई आर ग्रामे कोरे उपदेश, एई मत वैष्णव होइला सब दक्षिण देश। तो इसको कहते हैं एक्सप्लोजन, 7वां स्टेज, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गांव और गांव भक्त बनते चले गए, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो ये सभी प्रचार कैसे हुआ, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु हर गांव में गए। महाप्रभु डिंट विजिट एवरी विलेज, महाप्रभु हैड अ फिक्स्ड पाथ, उनका एक फिक्स्ड रूट था, और उस रूट में केवल दाएं बाएं एक एक आदमी को वो छू के छोड़ देते थे, और वो इधर जाके एक एक्सप्लोजन करता, वो इधर जाके एक दूसरा एक्सप्लोजन करता, ऐसे ऐसे करते करते पूरा दक्षिण देश हरे कृष्ण हो गया। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, इमत पथ यही ते शत शत जान, वैष्णव करे न तरे करे आलिंगन। शत शत जन, 100-100 लोगों को चैतन्य महाप्रभु रास्ते में मिले, उनको आलिंगन किया तो सब वैष्णव हो गए धीरे धीरे करके। महाप्रभु ने केवल एक बटन दबाया, और वो एक बटन दबाया तो एक एक करके पूरी तरह से भक्त हो गए। तो वास्तव में इस लीला के माध्यम से प्रचार को कैसे बढ़ाना है उसकी शिक्षा दी गई है। और अब आठवां स्तर आता है एलिवेट। प्रभुर कृपाय होए महाभागवत सही सब आचार्य होइया तारिला जगत। तो महाप्रभु से कृपा प्राप्त करके ये सभी महाभागवत बन गए और सही सब लोक कोइला सही सब आचार्य होइया तारिला जगत। और ये सभी व्यक्ति लोग आचार्य बन के पूरे जगत भर में कृष्ण भक्ति फैलाने के लिए तैयार हो गए और पूरे जगत का उन्होंने उद्धार कर दिया। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लोग सामान्य स्तर से उठकर आचार्य के स्तर तक पहुंच सकते हैं, केवल शक्ति को प्राप्त करके, कृपा को प्राप्त करके। तो इसलिए नवा एक बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं, वो है एग्जिट। नवद्वीप ये शक्ति न कोयला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशी निस्तारिला दक्षिण देशे। महाप्रभु ने ये शक्ति नवद्वीप में प्रदर्शित नहीं की। नवद्वीप ये शक्ति न कोयला प्रकाशे, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जन्मे लेकिन नवद्वीप में ये प्रचार की शक्ति, ये हरिनाम संकीर्तन की शक्ति उन्होंने प्रदर्शित नहीं की। से शक्ति प्रकाशिनी स्तारिला दक्षिण देश, केवल दक्षिण देश में यह शक्ति का प्रचार किया। क्यों? बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि उस समय नवद्वीप में बहुत सारे स्मार्त ब्राह्मण थे जो भक्ति को स्वीकार करना नहीं चाहते थे और महाप्रभु के विरोधी थे, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर यह हरिनाम का प्रचार नहीं किया। तो यहां पर दक्षिण भारत में लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे तो महाप्रभु ने उनको वहां पर दे दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन प्रीचिंग इन अ फेवरेबल सिचुएशन। इफ द कैंडिडेट्स फॉर कन्वर्जन आर टू डिस्टर्बिंग, अ प्रीचर मे नॉट अटेम्प्ट टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस अमंगस्ट देम। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रचार करते समय कभी मालूम पड़ा कहीं पे कोई प्रोग्राम है, कोई जगह है, कोई शहर है, कोई स्थान है, वहां पर लोग कृष्ण भक्ति के लिए इतने अनुकूल नहीं है और बारंबार प्रयास करने पर विघ्न ही डाल रहे हैं, बाधा ही डाल रहे हैं, समस्या और खड़ी कर रहे हैं, तो वहां सर पीटने से अच्छा है निकल जाओ और दूसरे जगह बांटो। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से दिखाया। नवद्वीप में प्रचार नहीं किया, दक्षिण भारत में जाके प्रचार किया क्योंकि वहां लोग परेशान कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने भी ऐसे ही किया, भारत में बहुत सर पीटा, बहुत लोगों को भक्त बनाने का प्रयास किया लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लोग उल्टा मेरे को गीता भागवत सिखा रहे थे, इसलिए मैं पाश्चात्य देशों में गया और वहां जाकर मैंने प्रचार किया। तो प्रभुपाद भी अपने इस प्रचार कार्य का इस श्लोक के आधार पर शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। तो कई बार प्रचार के समय बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें यहाँ प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हमको प्रचार करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं वो कहते हैं। और अब दसवां और अंतिम पॉइंट कहते हैं, एंटर इनटू दिस पास्ट टाइम्स। क्योंकि ये सब सुन के हमको लगेगा कि अगर दक्षिण भारत में इतने लोग हरे कृष्ण बने, आजकल जाते तो कोई दिखता ही नहीं हमको। 500 साल पहले अगर पूरा दक्षिण देश हरे कृष्ण था तो अभी कुछ तो चिन्ह होगा वहां पर, लेकिन दूर दूर तक देखो तो कोई दिखता ही नहीं है, सब रजनीकांत और जयललिता के ही भक्त दिखते हैं। क्या बात है, ऐसे इतने 500 साल में इतना परिवर्तन हो जाएगा क्या? और वास्तविक बात है, जब दक्षिण भारत में चेन्नई और तमिलनाडु में जब रजनीकांत का पिक्चर चलता है, वो जैसे स्क्रीन पे आता है लोग नारियल फोड़ते हैं उसके स्वागत में, और इस तरह से लोग पागल हो गए उसके पीछे और सब फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे। तो अगर 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के अनुसार सभी दक्षिण देश, पूरे दक्षिण देश को अगर भक्त बनाया, तो आजकल तो कोई चिन्ह दिखता ही नहीं और न किसी ने वहां महाप्रभु का नाम सुना है। ऐसा कैसे? ये क्या लीला बोनोफाइड है क्या? वास्तव में इतना हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा के बढ़ा के ऐसा वैसा कहे कि हमको उत्साह देने के लिए ये सब कह रहे हैं। तो कबीराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभु के ये भजे तार तार कृपा होए, सही ये सब लीला सत्य करी लोय। प्रभु के ये भजे तारे तार कृपा होए, जो भगवान का भजन करेगा और जिन पर कृपा होगी वो ही इन सभी लीलाओं को सत्य के रूप में स्वीकार कर पाएगा। सही से ये सब लीला सत्य करी लोय, अलौकिक लीला होए ना होए विश्वास, इहलोक परलोक तार होए नाश। तो कविराज गोस्वामी बड़े साइकोलॉजिस्ट लगते हैं कि वो जानते हैं कि ये लीला मेरा पढ़ते पढ़ते लोगों के दिमाग में क्या चलेगा। तो पहले कह देते अलौकिक लीला, अलौकिक लीला यार न होए विश्वास। ये लीला सुनते समय अगर विश्वास नहीं होगा, इहलोक परलोक तार होए नाश, इस लोक में अगले लोक में तुम्हारा नाश हो जाएगा, हाँ सावधान। तो बड़ा खतरनाक है, चेकमेट कर देते हैं बिल्कुल। अगर बैठ के सुनना है तो ध्यान पूर्वक सुनो और श्रद्धा के साथ सुनो। तो इस तरह से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के इन सुंदर मनोहर लीलाओं को देखकर बड़ा यह अद्भुत लगता है कि किस तरह महाप्रभु ने ये पूरे विश्व भर में ये लीला को फैलाई। तो अब और कुछ इसमें विशेष, महाप्रभु ने दक्षिण भारत में कुछ और बातें स्थापित की, ये अभी थोड़ा समय हो गया है तो हम लोग कल सुबह इसको भागवतम क्लास के समय आगे बढ़ाएंगे और फिर महाप्रभु कैसे जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, इस्कॉन पुणे मंदिर की, श्री राधा कुंज बिहारी जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण कीर्तन। ओके, गिव मी हारमोनियम, हारमोनियम।